بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 21 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب بھٹکا ہوا راہی ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں طارق اسماعیل ساگر. یہ کتاب قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. صفحہ نمبر 352. کافی وقت ان لوگوں نے آپس میں گپ شپ لگاتے گزارا. اس درمیان ارسلان کے کہنے کے مطابق نجمہ بیگم نے دونوں ماں بیٹی کو احساس دلا دیا تھا کہ وہ دونوں کو کبھی گرم سرد ہوا بھی نہیں لگنے دے گی. اس نے اشارے کنائے سے مختارہ اس کی بیٹی کو باور کرا دیا تھا کہ وہ بے دھڑک اپنا کام کرتی رہیں, اور یہی ارسلان چاہتا تھا. فوٹوگرافر نے 3 رول مکمل کر لیے تھے جب نجمہ بیگم وہاں سے رخصت ہوئی. اسے کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی. کیمرے میں نفس طاقت اور لینس نے اس کا سارا کام بڑی آسانی سے کر دیا تھا. اسے یقین تھا کہ وہ شخص جس نے اسے 1000 روپے دے کر اس سے صرف 3 رول ایکسپوز کروائے ہیں اس کے کام سے ضرور خوش ہوگا. فوٹوگرافر کو قطعاً اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ 3 عورتیں کون ہیں. نہ ہی اس نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی. اسے تو یہ کوئی بڑا ہی بیوقوف نوجوان دکھائی دے رہا تھا. وہ کام جس کے لیے اس نے 1000 دیا تھا یہ تو کوئی بھی شخص مفت کر دیتا. یوں بھی اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا, کوئی غلط تصاویر نہیں بنائی تھی, لیکن اس بات کی سمجھ اسے نہ آ سکی کہ آخر یہ شخص چاہتا کیا ہے. مسز ملک کی روانگی کے بعد ارسلان نے فوٹوگرافر سے 3 ایکسپوز رول لے لیے. اب وہ بجا طور پر خود کو فاتح کہلا سکتا تھا. واہ ارسلان, واہ, تم نے تو کمال کر دیا. اتنے بڑے بڑے لوگوں سے تمہارے تعلقات ہیں, اس کا تو مجھے علم ہی نہیں تھا. مسز ملک کے واپس جاتے ہی مختارہ بیگم نے اس پر صدقے واری ہونا شروع کر دیا. تم دیکھتی جاؤ بی بی, ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے. اب تمہیں علم ہو گیا نا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ اصل میں کس کا ہے. بے دھڑک ہو کر کام کرو. 2-3 چکر بھی تم نے کامیابی سے لگا لیے تو سمجھو تمہارے وارے نیارے ہو گئے. بی بی کروڑوں میں کھیلو گی, کروڑوں میں. جب تم اس شہر کی سڑکوں پر پجاروں میں بیٹھ کر گھومنے نکلو گی تو سارے شہر کے شرفا تمہیں جھک جھک کر سلام کیا کریں گے. بی بی تمہارا ماضی کسی کو یاد نہیں آئے گا, تمہیں بھی نہیں. اپنے نام کے ساتھ کسی بھی اعلیٰ ذات کا اضافہ کر لینا. ارسلان کی بات پر مختارہ نے زبردست کہکا بلند کیا تھا. ریاست شاہ کا تعلق اس خاندان سے تھا جو ملک کی آزادی کے بعد مسلسل رسم غلامی کو زندہ رکھے ہوئے تھے. اس نے اپنے پیشوں کی طرح ملک کی اعلیٰ ترین دستگاہ سے تعلیم حاصل کی تھی, اور خاندانی روایت کے مطابق ہر وہ ایپ اپنے اندر پیدا کر لیا تھا جو ایسے وڈیروں کے شایع نشان ہوتا ہے. ڈاکو اور قاتلوں کو اپنے پاس پناہ دینا, معمولی رنجش پر کسی بھی مخالف کی بہو بیٹی کو اغوا کروا دینا, اپنے علاقے کی بیوروکریسی کو ہر ممکن طریقے سے اپنے کنٹرول میں رکھنا, یہ وہ عادات تھی جو اسے ورثے میں ملی تھی. لیکن ریاست شاہ نے خود کو انہیں روایات کا پابند نہیں رکھا تھا. اس نے اپنی خاندانی روایات سے اوپر اٹھ کر ایک نئی جدت بھی اپنائی تھی, اور کوشش کر کے اپنا تعلق ڈرگ مافیا سے بھی قائم کر لیا تھا. صفحہ نمبر 354. ریاست شاہ رہتا تو شہر میں تھا لیکن اپنے گاؤں سے اس کی غیر موجودگی میں کوئی اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتا تھا. کتوں کی دوڑ میں ہمیشہ اس کے کتے پہلی یا دوسری پوزیشن حاصل کرتے تھے. اس کے گھوڑے ڈربی میں ہمیشہ فیوریٹ ہوتے تھے. درجنوں ملازم اس کے ان گھوڑوں اور کتوں کی نگرانی اور خدمت کیا کرتے تھے. اس شہر میں بہت کم خوش قسمت ایسے تھے جو اس کے کتوں اور گھوڑوں سے زیادہ بہتر زندگی گزارتے ہوں گے. نجمہ ملک اور ریاست شاہ کی ملاقات گھوڑوں کی ریس پر ہی ہوئی تھی. نجمہ ملک ڈربی میں شرکت کرنے آئی تھی. یہ ملاقات گو کہ اچانک تھی, لیکن دونوں نے پہلے ہی ملاقات میں اندازہ لگا لیا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں. ملاقات نے پھر ملاقاتوں کو جنم دیا. ریاست شاہ کو اسمبلی ممبری بھی اپنے بزرگوں سے ورثے میں ملی تھی. انگریز کے دور سے یہ لوگ اسمبلیوں میں بیٹھتے چلے آ رہے تھے. عورت اور شباب ان کی زندگی کا لازمی جز تھی. نہ جانے اس کی زندگی میں کتنی عورتیں آئیں اور چلی گئیں. ان میں ملک کے بڑے بڑے مقتدر گھرانوں کی وہ شریفزادیاں بھی تھیں جو خوب سے خوب تر کی تلاش میں اس سے ٹکرائیں, اور جسم و جان سے اس کی خدمت کرنے کے بعد جب یہ محسوس کرنے لگتی کہ معاملے سے آگے نہ بڑھے تو چپ چاپ علیحدگی اختیار کر لیتی. اور فائشائیں بھی تھیں جنہیں ایک رات میں ایک مہینے جتنا حق الخدمت موصول ہوتا تھا. خاندانی شادی تو ریاست شاہ کے بزرگوں نے اس کی کالج کی تعلیم کے فوراً بعد ہی کر دی تھی, لیکن یہ بات وہ بھی جانتے تھے کہ ان کے خاندانوں میں ایسی شادی صرف اتمام حجت کے لیے ہوتی تھی. اس کی نیک و پاک باز بیوی آبائی گھر میں نوکروں کی فوج رکھ کر موج اور 2 بچوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی, اور ریاست شاہ शहर में गुलछड़े उड़ा रहा था, और ये चूंकि कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं थी इसलिए बेचारी ने उसे अपना नसीब जानकर कबूल कर लिया था। रियासत शाह को जब से सरकारी मुशीर का दर्जा हासिल हुआ था उसके बाद से एक सिक्रेटरी नुमा बीवी की जरूरत वो शिद्दत से महसूस करने लगा था। जिस बेतकल्लुफी का मुजाहरा नजमा मलिक ने किया था उसके बाद जब उसे इल्म हुआ कि नजमा मलिक का एक सियासी पस मंजर भी मौजूद है तो रियासत चौंके बगैर ना रह सका। सफा नंबर 355। ये तो वो भी जानता था कि मलिक ऐसे बूढ़े सियासतदान को नजमा मलिक ने सीढ़ी बना रखा है, और अगर उसे रियासत शाह जैसा मजबूत सहारा मिल जाए तो मलिक की बैसाखियां उठाकर वो परे फेंक देगी। दूसरी तरफ नजमा मलिक ने महसूस कर लिया था कि अब मलिक साहब की कश्ती भी डानवा डोल है। वो ब्लैकमेलिंग के सामने झुककर सरकारी लीक में शामिल हुए थे और सरकारी लीक वालों ने उन्हें खूब खूब इस्तेमाल किया था। चंद महीनों ही में मलिक साहब का शुमार सूबाई लीग के सफे अव्वल के दुश्मनों की सफ में होने लगा था, जिसके बाद कम अज कम उनका सियासी मुस्तकबिल पहले जैसा महफूज नहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आज अगर मरकजी लीग का जोर था तो सियासत के उतार चढ़ाव का इस मुल्क में किसी को कभी अंदाजा ही नहीं हो सका। न जाने कल किस बात पर उसका धड़न तख्ता हो जाए। यूं भी ब्लैकमेल होने के बाद से मलिक साहब की बार्गेनिंग पावर कम पड़ गई थी। नजमा मलिक ने मोहतात तरीन राय यही कायम की थी कि मलिक साहब का मामला 50-50 पर अटक गया है, जबकि उसे 100% कामयाबी चाहिए थी। वो तेजी से आगे बढ़ना चाहती थी। इस पर छा जाने का जुनून सवार था और इस जुनून ने उसे रियासत शाह के नजदीक कर दिया था। उधर मलिक साहब ने नजमा बेगम के तेवर भांप लिए थे। वो तो दांत देख कर जानवर का अंदाजा लगा लिया करते थे। ये तो कल की लौंडिया उसके अपने हाथों का लगाया हुआ पौधा था। बंडर की तलाक याफ्ता बीवी ने बड़ी तेजी से सियासी उफक पर नुमाया होना शुरू किया था। ये खातून बंडर की रिश्तेदार और आला तालीम याफ्ता थी, लेकिन दूसरी बेगमात के बारे में इसने बंडर साहब को मनमर्जी से रोकना चाहा था। बंडर ने पहले तो बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन फिर इस खौफ से कि कहीं अखबार को कोई और स्कैंडल हाथ ना लग जाए उसने एक रोज चुपचाप रकिया बेगम से अलहदगी इख्तियार कर ली। सफा नंबर 356। जब गुलामी का ये ताक मगरबी दर्शकों की तालीम याफ्ता ज़किया बेगम से गले से उतरा तो उसने खुलकर मैदान में आने का फैसला कर लिया। सियासत का आगाज उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकारी पार्टी में शमूलियत के ऐलान से किया और जल्दी पार्टी की खवातीन विंग की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के अहदे तक पहुंच गई। फिर वो वक्त भी आया जब उसे खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर सैनेट में बिठा दिया गया। ज़किया बेगम गुनशनास औरत थी। वो इंसान की सलाहियतों के बिना पर ही उसकी कीमत का अंदाजा लगाया करती थी। मलिक साहब को मरवज्जा सियासत में खलीफा का दर्जा हासिल था और ऐसे लोग ज़किया बेगम की कमजोरी हुआ करते थे। जब से मलिक साहब ने सरकारी लीग में शमूलियत इख्तियार की थी उसके बाद से ज़किया बेगम की दिलचस्पी उनमें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। उसने अंदाजा लगा लिया था कि नौजवान इंतहाई चलाक किसी छोटे घराने की औरत का ये बूढ़ा खामिन देर तक इस चिड़िया को अपने सुनहरी पिंजरे में बंद नहीं रख सकेगा। ज़किया बेगम की जवानी ने भी पर लगाकर उड़ना शुरू कर दिया था। गो के मगरब से दरामद सामान की आरायश जेबाई से उसके घर की अलमारियां अटी पड़ी थी और अभी खासी अरसे तक उस रेपा पोती के सहारे अपनी तेजी से गिरती हुई जवानी का भरम कायम रख सकती थी। लेकिन अब उसे शिद्दत से खावन की जरूरत का एहसास होने लगा था। वो जानती थी कि किसी भी डमी खावन की मौजूदगी में वो बहुत सी माशरती पाबंदियों से मुस्तस्ना हो सकती है। दूसरी तरफ मलिक साहब के लिए ज़किया बेगम का रोशन सियासी करियर तो बहसी दिलचस्पी था ही, लेकिन भंडर की सबका बीवी को अपना बनाकर वो अपने दुश्मन के लिए एक मुस्तकिल रहने खुलजान का बायस भी बन सकते थे। यही थी वो मुश्तरका दिलचस्पियां जो दोनों को एक दूसरे के करीब ले आई थी, और ये सिलसिला अब खासा लंबा होता जा रहा था। सफा नंबर 357। मुझे रियासत शाह के हवाले से छपने वाली खबरों पर सख्त शर्मिंदगी का सामना रहता है। मैं अब ये ढोंग ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। नजमा बेगम अपनी हैसियत को मत भूलो। मैंने तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान पर बिठाया है, इसका मतलब हरगिज नहीं कि तुम मेरी पकड़ी अखबारात में उछालती फिरो। उस रोज जब एक अखबार ने नजमा बेगम के ताजा इश्क की कहानी को मौजू बनाया तो मलिक साहब का पैमाना सब बिलाकर छलक पड़ा। ओहो, बड़ा गुस्सा करने लगे हैं आजकल आप, ब्लड प्रेशर कुछ बढ़ गया है शायद। मलिक साहब, मैंने कई मरतबा अर्ज किया है कि मुझे मेरी हैसियत याद ना दिलाया कीजिए। ये काम अगर मैंने शुरू कर दिया तो आपको ज्यादा तकलीफ पहुंचेगी। उसने सिगरेट का तवील कश लगाकर मलिक साहब की तरफ धुआं और तंस उछाल दिए। हमारी बिल्ली और हमी को मियाऊ, मलिक होंठ काटता रह गया। कुछ भी कह लीजिए मलिक साहब, लेकिन ये जरूर याद रखिए कि मैं आपकी ज़रख़ीर गुलाम नहीं हूँ, और ना ही आप इस हैसियत में हैं कि अपना हर हुक्म मुझ पर चला सके। नजमा बेगम ने काटदार लहजे में कहा, मैं इस पाखंड को खत्म करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये अखबारात का मौजू बने। मुमकिन है तुम्हारे लिए अपनी इज्जत कोई मसला ना हो, लेकिन मेरे लिए बहरहाल है, मलिक साहब ने बिलाखिर फैसला कुल लहजे में कहा। जैसे आपकी मर्जी, बस इस बात का ख्याल रहे कि मेरे साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। बहरहाल मैं अब आपकी दाश्ता नहीं हूँ, बीवी हूँ, बराबर की हकदार, और शायद आपने निकाहनामे में ये सब कुछ तहरीर भी किया है। नजमा बेगम ने सिगरेट की राख एस्ट्रे में झाड़ दी। उतर आई ना अपनी औकात पर, बेफिक्र हो, मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा। आखिर तुमने मेरी रातों को रंगीन किया है, और मेरे लिए यूं भी पैसे की कभी कोई अहमियत नहीं रही, मलिक साहब ने होंठ काटते हुए कहा। सपा नंबर 358, ऑल राइट, मैं मुंतजर रहूंगी। मैं तुम्हें इस वक्त तलाक दे देता, लेकिन ज्यादा बेहतर यही कि ये बात अभी अखबारात में ना आए। इसमें हम दोनों का फायदा है। अगर तुम इसे भी मेरी कमजोरी समझती हो, तो बेशक इस मामले को अखबारात तक भी ले जाना। मेरा वकील आज ही तुम्हारे साथ मामला तय कर लेगा। यह कहकर मलिक साहब बगैर कुछ सुनने बाहर निकल गए। मुस्कुराहट नजमा बेगम के होठों पर फैल गई। वो एक दरख्त से अपनी मर्जी का रस चूसने के बाद अब दूसरे दरख्त का रुख करने जा रही थी। रियासत शाह बहरहाल उसे ज्यादा तहफ़ दे सकता था, क्योंकि साहब के बरक्स उसके यहाँ खानदानी शराफत का सिलसिला एक अरसे से चल रहा था। मलिक साहब अपने खानदान के पहले शरीफ थे। मैंने मलिक से अलहदगी का फैसला कर लिया है, उसने अरसलान के बैठते ही कहा। अरसलान को मिसेस मलिक ने फोन करके खास तौर से यहाँ बुलाया था। बहरहाल वो इसका बिजनेस पार्टनर था, जिसको एतमाद में लेना उसके लिए जरूरी था। दोनों एक 5-स्टार होटल में बैठे थे। क्या ख्याल है तुम्हारा, उसने अरसलान से पूछा। आपके हर फैसले से मुझे खुशी होगी। मैं जानता हूँ आप कभी गलत फैसला कर ही नहीं सकती। अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज्यादा बसीरत से नवाजा है। यूं भी आपका मिशन आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर देखना नहीं। इसलिए जो बात हो गई उस पर तबसरा कैसा, अलबत्ता मेरे दिल में एक हसरत बाकी रहेगी। क्या? काश मैं मालिक साहब से अपनी महरूमियों और मजालिम का बदला ले सकता, अरसलान ने कुछ सोचते हुए हवा में तीर चलाया। इस सिलसिले में तुम जिस तरह चाहो मेरी मदद हासिल कर सकते हो। यूं भी अब हमारे दरमियान कोई पर्दा तो रह नहीं गया, क्योंकि तुम मुझे बीवी की हैसियत से कबूल नहीं करोगे, इसलिए शायद मैंने तुम्हारी मनकूहा बीवी बनने पर गौर नहीं किया। इसके अलावा तो नजमा बेगम आंख दबाते हुए हंसती। सपा नंबर 359, मैं आपका एहसान मंद हूँ नजमा बेगम, लेकिन मैंने कभी अपनी हैसियत से बढ़कर नहीं सोचा। मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता कि आपके साथ इस हैसियत से मुंसलिक हो जाऊं। बहरहाल आपका समाजी रुतबा मुझसे बहुत ज्यादा है। आप मुझ पर एक एहसान जरूर फरमाएं, अगर मुमकिन हो तो वो तस्वीर जो आपने नाज़रीन और मलिक साहब की तैयार करवाई थी, उनका एक सेट मुझे भी इनायत कर दे। मैं उस बुढ़े खुसर्द की बेबसी का तमाशा देखना चाहता हूँ, जिस तरह उसने मुझे बेबस करके मारा है। इसके अलावा नजमा साहिबा, मुझे इन तस्वीर के जरिए नाज़रीन और उसकी माँ को भी काबू में रखना होगा। गो की इसकी जरूरत नहीं, लेकिन आपने खुद ही कहा करती है कि इंसान का दिमाग घूमने पर आए तो एक पल में जाने उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दे। मुस्तकबिल में हमारे कारोबार के तहफ़ के लिए इन तवायफों पर गिरफ्त मजबूत रखना जरूरी है। यूं भी नजमा बेगम, अब आप एक मौजूद असेंबली मेंबर की बीवी बनने जा रही हैं। मलिक साहब को ब्लैकमेल करना शायद आपको जेब नहीं देता, अरसलान ने आखिरी बात कहकर उसके चेहरे पर पूरी उम्मीद नजरें गाड़ी। बहुत चलाक हो, मुकम्मल कारोबारी और मौके से भरपूर फायदा उठाने वाले, अच्छी बात है, मुझे खुशी होती है। बहरहाल इस तरबियत में मेरा भी हिस्सा है, अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन इस हकीकत इनकार नहीं कर सकते कि अगर मैं तुम्हें राह रास्त पर ना लाती तो आज तुम मलिक के एक मामूली कारिंदे से ज्यादा हैसियत ना रखते, जिसे वो जब चाहता नवाज या अख्तर की तरह बलि चढ़ा देता। अरसलान, मैं हैरान होती हूँ ये सोचकर कि मैं तुम्हारी किसी बात को रद्द क्यों नहीं करती। अरसलान, मैं इतनी आसानी से बात मान जाने वालों में से नहीं हूँ। बहरहाल मुझे महसूस होता है कि तुम मेरी कमजोरी बनते जा रहे हो। ये कहकर वो कुछ सोचने लगी। अरसलान खामोशी से उसका मुंह देखता रहा। ठीक है, कुछ प्रिंट मैं तुम्हें भी दे दूंगी, लेकिन उसके नेगेटिव मेरे पास ही ज्यादा महसूस रहेंगे, क्योंकि हम बिजनेस पार्टनर हैं, इसलिए हमें एक दूसरे से तामन तो करना है। सपा नंबर 360, मैं आपके इस एहसान का बदला सारी उम्र नहीं चुका सकता। आप मेरे तसव्वुरात से बढ़कर अजीम औरत हैं। बस बस, नजमा बेगम ने हाथ उठाकर उसकी बात रोक दी। इसकी जरूरत नहीं, तुम मेरी तारीफ ना भी करो तो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अरसलान, मुझे इल्म नहीं तुम्हारी मेरे मुतल्लिक क्या राय है, लेकिन अगर तुम यकीन कर सकते हो तो कर लो कि मैंने अज़वाजी जिंदगी के दौरान जिस नौयत के ताल्लुकात तुम्हारे साथ कायम किए किसी और के साथ नहीं किए। और हाँ, मुझे अभी कुछ ज्यादा जल्दी भी नहीं है, मैं शादी अब सोच समझ कर ही करूंगी। इस बात में कोई शक नहीं कि रियासत शाह की ख्वाहिश है कि हम जल्द अज जल्द रिश्ते अजवाज में मुंसलिक हो जाएं, लेकिन मैं इलेक्शन के बाद ही कुछ कर सकूंगी। अभी मेरे ख्याल से मुझे सारी तवज्जो बिजनेस और सोशल वेलफेयर पर ही देनी चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं आपकी इस बात से 100% इतफाक करता हूँ। वाकई अभी आपको जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। फिर नजमा बेगम, ये भी तो मालूम नहीं कि रियासत शाह से शादी के बाद हमारे ताल्लुकात की नौयत क्या हो जाएगी, क्योंकि मलिक मलिक साहब की बात तो और थी। वो तो तुम उसकी फिक्र ना करो, वो मेरा दर्द सर है, उसने अरसलान की बात समझ कर काटते हुए कहा। दोनों दोपहर तक वहीं रहे। मिसेस मलिक ने उसे जाते हुए बताया था कि वो जिस कोठी में रिहायश पजीर है वो मलिक साहब ने उसके नाम लगा रखी है, और नजमा बेगम अपनी रिहायश अब वहीं रखेगी। उसने अपने एक भाई बहन और माँ को भी यहीं रखने का फैसला किया था। इस तरह वो कम से कम फैमिली लाइफ का तासुर कायम रख सकती थी, वरना तो अखबार वाले उसके वो लगते लेते कि खुदा की बना। अब उसे बहुत मोहतात होकर जिंदगी गुजारना थी। उसने अरसलान को बता दिया था कि मलिक अरसलान के लिए मसाइल पैदा करेगा, क्योंकि वो कम अज कम अरसलान पर नजमा बेगम के साथ रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी खतरे की पेशबंदी के लिए तो आपसे तस्वीर मांगी है। मैं नहीं समझता कि इसके बाद भी मलिक साहब को दिमाग की खराबी का दौरा पड़ेगा। शाबाश, लेकिन मोहतात रहना और हाँ, खुद को अकेला कभी ना समझना। तुम कोई ऐसी वैसी मछली नहीं जिसे मलिक आसानी से निकल सके, नजमा बेगम ने उठते हुए कहा। नजमा बेगम, अब आप मेरे और मलिक के दरमियान से हट गई हैं। अब आप देखेंगी कि मैं मलिक साहब को किस तरह दिखने का नाश मचाऊंगा। बेगम साहिबा, जिन लोगों ने मुझसे मेरा घर और मेरी शनाख्त छीनी है, मैं उनको नेस्तो नाबूद करके रख दूंगा। इसके अलावा मेरी जिंदगी का और कोई मकसद नहीं रह गया। अरसलान भी उठ खड़ा हुआ। उसकी आखिरी बात पर एक लम्हे के लिए नजमा बेगम चौंकी जरूर थी, लेकिन फिर उसने इस ख्याल ही को अपने दिल से निकाल दिया कि ये कल कलौंदा कभी उसके लिए भी कोई खतरा पैदा करेगा। सफा नंबर 362, हमला। नजमा और मलिक ने बड़ी होशियारी से अलहदगी अख्तियार कर ली थी। मलिक साहब 15 रोज के लिए इलाज करवाने लंदन चले गए थे, और जिस कोठी में वो मुकीम थे वो उन्होंने खाली कर दी थी। नजमा की हिदायत पर अभी तक रियासत शाह ने ज्यादा गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं किया था। यूं भी वो पुराना शिकारी था और शिकार को बड़े सब्र सुकून के साथ मार खाने का कायल। नजमा बेगम ने अपने घर वालों को अपनी दौलत के बलबोते पर खासा मुअज्जिज़ बना दिया था। उसके खानदान में शायद इसके 2-3 बहन भाई ही ऐसे थे जिन्होंने इतने आला और महंगे स्कूलों में तालीम हासिल की थी। इन लोगों के नजमा बेगम से बहुत अरसे पहले, जब वो मलिक साहब की बीवी बनी थी, इस शहर की मॉडर्न आबादी में एक फ्लैट किराए पर ले दिया था, जहां वो अपनी जात बदलकर अपने नामों के आगे पीछे नए नामों का इजाफा करने के बाद बड़े टाट पाट से जिंदगी बसर कर रहे थे। पेश आमदा हालात की पेशबंदी करने की खातिर उसने सारी मुंडली अब अपने हाथ जमा ली थी। उसका घर इतना बड़ा था कि ऐसे 2-4 और खानदान भी इसमें समा सकते थे। जो कारोबार उसने संभाल रखा था उसमें इतनी ज्यादा आमदन हो जाती थी कि जिसके बाद उसे किसी और सहारे की जरूरत ही ना रह जाती। सफा नंबर 63, अपना धर्म कायम रखने के लिए उसने पहले ही से 3-4 खैराती किस्म के इदारे खोल रखे थे, जहाँ वो बेवा बेसहारा खवातीन से दस्तकारी करवाकर यहाँ का तैयार शुदा माल फिर बाजार में अच्छे दामों फरोख करवा दिया करती थी। इन इदारों के नाम पर अच्छी खासी ग्रांट उसे सरकारी तौर पर अलग से मिल जाया करती थी। अपनी दानस में तो दोनों ने खासी एहतियात बरती थी, लेकिन उसके अंदाजों के बिल्कुल बरक्स मलिक साहब की लंदन मौजूदगी के दौरान ये राज तश्त अजबाम हो गया, जिसके बाद से अखबार ने इसको मौजू बना लिया। जिस रोज मलिक साहब लंदन से लौटे तो हवाई अड्डे पर ही अखबार नवेशों ने उन्हें घेर लिया। मलिक साहब का बादल खास इस हकीकत को एतराफ करना पड़ा कि उनके नजमा बेगम के दरमियान खामोशी से अलहदगी हो चुकी है। दोनों ने ये फैसला सोच समझ कर किया है। उन्होंने अखबार नवेशों से अपील की थी कि उनकी जाती जिंदगी को अखबार में ना उछाला जाए। इसी नौयत का बयान नजमा बेगम ने अखबार को जारी किया था, जब एक तकरीब में एक अखबार नवीस ने रियासत अली के हवाले से कुछ बात कहना चाही तो नजमा मलिक ने उसे बुरी तरह डांटा कि बेचारा हक्का बक्का ही रह गया। उसके बाद किसी ने इस नौयत का कोई सवाल ही नहीं किया था। कलर बादशाह से ज्यादा तेजी के साथ वंडर की किस्मत ने पलटा खाया था। बड़ी मुश्किल से उसने पार्टी में अपनी धाक बिठाई थी, लेकिन सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए और मलिक ने एक ही दाव में से चारों शानी चित कर दिया था। उस रोज जब सुबाई ली को अपने अंदरूनी खाना जराये से इत्तला मिली कि अगले 48 घंटों के अंदर अंदर मरकजी लीग की तरफ से इलेक्शन के निकात का ऐलान होने वाला है, तो इनके हाथों के तोते उड़ गए। अभी तक ये लोग कोई ड्रामा हुकूमत के खिलाफ ऐसा तैयार नहीं कर सके थे जिससे अपनी गिरती साख को संभाला दे सके। फिल वक्त तो मुल्की फजा उनके खिलाफ थी और कलर्क बादशाह की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुल्की और गैर मुल्की जराये अबलाग में एक साजिश के तहत कुछ ज्यादा ही उछाला जा रहा था। सफा नंबर 364। इससे बेहतर फजा कुदरती तौर पर मुखालफिन को फिर कब मैसर आ सकती थी। सुबाई लीग के करता धरता जानते थे कि अगर इन हालात में इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया तो वो शायद एक सूबे में भी अपनी हुकूमत बरकरार ना रख सके। हालांकि इससे पहले इन लोगों ने दिन रात मेहनत करके अवाम में खासी जगह बना ली थी। भंडर साहब बुरा मत माने, आपने हमारे सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। दिन रात मेहनत करके हमने आवाम के दिलों में जो जगह बनाई थी और हालात को अपने हक में इस्तवार किया था, लेकिन आपने मलिक साहब की दुश्मनी में अंधे होकर हमें अपने बेहतरीन दिमाग से महरूम कर दिया। जी हाँ, बुरा मत मानिए भंडर साहब, सिर्फ आपकी वजह से मलिक साहब ने पार्टी से अलहदगी इख्तियार की है और आपने आज तक सिवाय बड़े बड़े दावों के और कुछ नहीं किया। जनरल सिक्योरिटी तमाम एहतियातें बलाए ताक रखकर भंडर पर बरस पड़ा। वो लोग 24 घंटे के नोटिस पर मुल्क के कोने कोने से आज यहाँ इकट्ठे हुए थे। भंडर जानता था कि जनरल सिक्योरिटी कभी इसका हमदर्द नहीं रहा और मलिक के बेहतरीन साथियों में इसका शुमार होता था। सिक्योरिटी साहब, कम अज कम पार्लियामानी आदाब का ख्याल तो रखिए। आप एक सीनियर मेंबर से बात कर रहे हैं, आपको किसी भी पार्टी मेंबर को डांटने का हक किसने दिया है? भंडर के इशारे पर उसके एक साथी ने खड़े होकर हंगामे का आगाज करना चाहा। उसने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो जानता था कि आज के इजलास में सबकी तान उस पर ही टूटेगी, खुसूसन मलिक के पुराने दोस्त जिनमें पार्टी सिक्योरिटी सर फहरिस्त था उसको खूब रगड़ेंगे। आप बैठ जाए मियाँ साहब और मेरी बात को समझने की कोशिश करें। सिक्योरिटी को भी गुस्सा आ गया। क्या मतलब, आपको शर्म आनी चाहिए। आप मुझे बैठ जाओ और चमचे। मियाँ साहब की बात ना मुकम्मल थी जब अकद से आवाज बुलंद हुई। सफा नंबर 365। क्या बकवास है, ये कौन से लोग आपने इकट्ठे कर लिए हैं यहाँ? मैं सदर साहब आपसे पूछ रहा हूँ। मियाँ को तैश आ गया। सिट डाउन, अपने औकात में रहो। तुम हो क्या? सिक्योरिटी के एक साथी की गैरत जागी। इसके साथ ही भंडर उठकर खड़ा हो गया। सदर साहब, यहाँ गुंडागर्दी का मंसूबा बनाया गया है। मुझे इस बात का इल्म है कि इस भानमती के कुंभे ने क्या प्लान तैयार किया है। खुदा रहे ने समझाइए, ज्यादा तमाशा ना लगाए। जितनी इसकी उम्र है उससे ज्यादा वक्त मैंने सियासत में गुजारा है। आपने झक मारी है। भट्टी साहब को भी जोश आ गया। उसने सिवाय गुंडागर्दी की सियासत के और किया ही क्या है? चुप करो ए शराफत के मामे, अब सयाल साहब की बारी थी। तेरी ये हिम्मत, कहते हुए सयाल साहब की तरफ लपके से पहले कि सदर साहब और दूसरे मेंबरान इन हालात को संभालें, दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। इसके साथ ही वहां मछली बाजार लग गया। हर कोई हंसते तौफीक दूसरे को तलवारें और गालियां सुना रहा था। हजरात बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सदर साहब मुसलसल अपीलें कर रहे थे, लेकिन कोई उनकी अपील पर कान धरने को तैयार ही नहीं था। देखते ही देखते जूतियों में दाल बटने लगी और सदर साहब को बादलों खासा दोपहर तक इजलास मुलतवी करना पड़ा। पार्टी मेंबरान ने हाथापाई तो ना होने दी, लेकिन इसमें कसर भी नहीं रह गई थी। उस वक्त तो इन लोगों की हैरानी की इंतहा न रही जब उन्होंने देखा कि कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर मौजूद इनकलाबी स्टूडेंट गुज्जर ग्रुप के कारकुन जनरल सेक्रेटरी साहब के खिलाफ नारे लगाते अंदर घुस आए। उन्होंने भंडर साहब को अपने कंधों पर उठा लिया, उनके हक में नारेबाजी शुरू कर दी। सफा नंबर 366। इसके साथ ही किसी ने कुर्सी उठाकर भंडर साहब की तरफ उछाल ली और देखते ही देखते वो लोग आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। अखबार नवीस भी सुनहरी मौके की तलाश में थे। कैमरों की फ्लैश गने चमकी और ये मनाजिर स्लो लाइट के पीपों में मुंतकिल हो गए। 15-20 मिनट तक कॉन्फ्रेंस हॉल मैदान जंग का नक्शा पेश कर रहा था। जब मामला किसी तरह ठंडा पड़ता नजर न आया तो पार्टी सेक्रेटरी ने दिल पर पत्थर रखकर पुलिस को मुदाखलत का हुक्म दे दिया। पुलिस वाले भी जाने कपड़े ताव खाए बैठे थे। उन्होंने लड़कों की वो दुर्गत बनाई कि खुदा की पनाह। 10 मिनट के अंदर अंदर हंगामा फर्द हो गया। जब अखबार नवीस अपने दफातर की तरफ भागने के लिए अपनी मोटरसाइकिलें स्टार्ट कर रहे थे तो एन उन लम्हात में सुबाई लीग के कुछ मेम्बरान ने अपना असर रसूख से काम लेकर लिफाफे उनकी जेबों में मुंतकिल किए, उन्हें हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रोक लिया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी के सदर साहब की तरफ से पार्टी के सेंट्रल ऑफिस में की गई थी। एक घंटे के नोटिस पर बुलाई गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी के इंतजाम इतने सख्त थे कि किसी चिड़िया के भी यहाँ पर पर मारने की गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही थी। इनकलाबी स्टूडेंट के गुजर के मुखालिफ विंग के तलबा ने गार्ड के फ्राइज संभाल रखे थे और सिर्फ इस पार्टी मेंबर को अंदर जाने की इजाजत देते थे जिसे सिक्योरिटी या सदर साहब की क्लियरनेस मिलती थी। सदर साहब ने अखबार नवीसों में एक लिखा हुआ बयान तकसीम कर दिया जिसमें बताया गया था कि मरकजी लीग के परवरदा गुंडा नासिर ने खूब खूब नमक के हक अदा किया और एक साजिश के तहत हंगामा खड़ा किया गया जिसमें पार्टी का कोई मेंबर मुलविस नहीं। ये सारा कारनामा मरकजी लीग और उन सरकारी एजेंसियों का है जो मरकजी लीग को आइंदा इंतखाबात में कामयाब करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। बयान में सूरत हाल को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए इसकी सारी जिम्मेदारी मुखालफीन पर डालकर सदर साहब ने वार्निंग दी थी कि मरकजी लीग ने सियासत में तशद्दुद और गुंडागर्दी की जो पॉलिसी अख्तियार कर रखी है वो जमहूरियत को तबाह करके रख देगी। जनाबे वाला, एक अखबार नवीस ने खड़े होकर सवाल करना चाहा। ओए बैठ जाओ, कोई सवाल नहीं होगा, समझ आई? सदर साहब की बगल में खड़े एक इनकलाबी गार्ड ने उसे डांट कर बिठा दिया। हजरात बाकी बातें चाय पर, ये कहकर सदर साहब उठ खड़े हुए। अखबार नवीस नदीदे बच्चों की तरह चाय और दीगर लवाजमा पर टूट पड़े। इस दरमियान तमाम अखबार नवीसों की हसबे मराते और हसबे मामूल जेबे गर्म हो चुकी थी, लेकिन सूबाई लीग के लोग ये देखकर हैरान रह गए कि अगले रोज मुल्क के करीबन हर काबिल ज़िक्र अखबार ने इस हंगामे की खबर शहर रुकनिया से शाया की थी, अपने तबसरे भी शाया किए थे। ये तमाम अखबार कम अज कम इस बात पर मुत्तफिक थे कि सूबाई लीग में मौजूद एक खास ग्रुप की गुंडागर्दी की वजह से अच्छे लोगों से इलहदगी इख्तियार करते जा रहे हैं। इन अखबारात ने अगले इंतखाबात में सूबाई लीग की कामयाबियों के दावे को बातिल करवाना था और यही ख्याल जाहिर किया था कि अपने दावों के बरक्स सूबाई लीग शायद एक सूबे में भी अपनी हुकूमत कायम ना रख सके। नजमा बेगम ने अगले रोज ही मलिक साहब की तस्वीर अरसलान तक पहुंचा दी थी जिसका उसने जरूरत से ज्यादा गर्मजोशी से शुक्रिया अदा किया था। ये बात अब उसके लिए हैरान कुन नहीं रही थी कि नजमा बेगम ने उसकी किसी गैर अखलाकी हरकत का बुरा मनाना छोड़ दिया था, लेकिन उसने भी कभी अपनी हद से तजावुज नहीं किया था। स्पॉन्सरशिप आ गई है और दोनों माँ बेटी भी लंदन की सैर के लिए उतावली हुई जाती हैं। बस आपके हुक्म का इंतजार है। अरसलान ने इस मरतबा खेल कर ड्रॉप सीन करने की ठान रखी थी। इसमें हुक्म की क्या बात है जनाब, हम बराबर के पार्टनर हैं, बस जरा सजावल खान से सपा नंबर 368। नजमा बेगम, आपने ना जाने क्यों उसे अपने जहन पर मुसल्लत कर रखा है। भाई, इस मुल्क में कितने लोग इस धंधे से वाबस्ता हैं? क्या वो पहले सजावल खान से सर्टिफिकेट लेकर ही अपना काम शुरू करते हैं? अगर मैंने पहले चक्कर ही में बाहर मंडी और घाट तलाश कर लिया था तो सजावल खान के मशवरे से नहीं किया था। बराए मेहरबानी आइंदा आप ये नाम इस्तेमाल ना किया करें। मुझे तो अब इस शख्स से ख्वाम खाकिर रकाबत महसूस होने लगी, हालांकि रियासत शाह से होनी चाहिए। आखिरी फिक्रे पर नजमा बेगम ने कहकर लगा कर के गाल पर चुटकी ली थी। अब तुम भी ऐसा सोचते हो, उसने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। परसों शोके से दोनों तैयार बैग वसूल कर लेना, इस मरतबा उन्हें दूसरे एयरपोर्ट से भेजना है। मैं खुद नहीं जाऊंगी लेकिन वहाँ अपना आदमी मौजूद है और हाँ, इस मरतबा माल जरा डबल करके भेजते हैं। मैं चाहती हूँ कि इस कामयाब चक्कर के बाद रियासत अली से शादी कर लूँ, जिसके बाद लंबे अरसे तक खामोशी इख्तियार करना है क्योंकि रियासत शाह को एतमाद में लेते हुए जरा देर लगेगी। मैं जानती हूँ तुम जो कहना चाहते हो, इस बात का मुझे भी इल्म है कि वो ये काम एक अरसे से चला आ रहा है, लेकिन इस चीज का ख्याल रहे कि उसे अभी इस बात का इल्म नहीं हुआ कि मैं ये धंधा कर रही हूँ, हालांकि वो माजी में मेरे और सजावल खान के ताल्लुकात से बाखबर है। लेकिन वो ये भी जानता है कि ऐसे सोशल ताल्लुकात सियासत में जिंदा रहने के लिए नागुजीर हैं और उन पर कदगन भी नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, जैसे आपका हुक्म, नौकर क्या और नखरा कैसा, अरसलान ने हसबे ख्वाहिश हरकत की थी। दोनों कुछ देर आपस में बातें करते रहे, फिर अलग अलग होटल से रुखसत हो गए। मलिक साहब से तलाक लेने के बाद नजमा और अरसलान ने अपनी मुलाकातों में खासी एहतियात बरतना शुरू कर दी थी। इस एहतियात का ज्यादा मुजाहरा अरसलान की तरफ से होता था, हालांकि नजमा बेगम को उससे उलझन होती थी और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि अरसलान अब मलिक से किसी वजह से खौफजदा रहे, जबकि वो खुद मलिक पर दबाव रखना चाहती थी, लेकिन अरसलान की ख्वाहिश पर उसने ज्यादा इसरार नहीं किया था। उसने नजमा बेगम से दरख्वास्त की थी कि वो कुछ अरसे के लिए सोशल तकारीब में से बताओ से कैसे अपने साथ ले जाना छोड़ दे। इस दरमियान मलिक के शर से महफूज रहने और सांप का जहर निकालने का कोई बंदोबस्त भी करेगा। यहाँ से रुखसत होकर उसने सजावल खान को फोन किया था, लेकिन वो मुल्क से बाहर था। अरसलान की ख्वाहिश पर इसका पैगाम फौरी रबते के लिए सजावल खान को पहुंचा दिया गया था और दोपहर के बाद उसे सजावल खान के एक दफ्तर में पहुंचने की हिदायत की गई थी। इस दफ्तर में दो तीन मरतबा पहले भी वो जा चुका था और यहाँ का स्टाफ भी उसे पहचानने लगा था। दफ्तर के मकामी इंचार्ज ने उसकी रहनुमाई एक फोन तक की, जहाँ उसके बैठने के 15-20 मिनट बाद ही सजावल खान की गैर मुल्क से कॉल मौसूल हो गई। किताब का पार्ट नंबर 21 यहाँ मुकम्मल हुआ। किताब का बकिया हिस्सा पार्ट नंबर 22 में सुनिए।